ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम कैंटो 5 चैप्टर नंबर 21 द एंटाइटल ऑफ द मोमेंट ऑफ द सन टेक्स्ट नंबर 15 रथनी डस्तो षडत्रिंशल् लक्षयोजनायस्तुरेय भाग विशालस्तावान् रविरथयुगो यत्र हयाच्छन्दो नामानः सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यम्। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। रथ निध द इंटीरियर ऑफ द चैरियट तो बट सत्रिंशत लक्ष योजन आयुत थ्री मिलियन सिक्स हंड्रेड थ्री करोड़्स सिक्स मिलियन योजनास लांग तत्तुरीय भाग वन क्वार्टर ऑफ दैट मेजर विशाला हैविंग ए विथ तावान सो मच आल्सो रवि रथ युगह द योग फॉर द हॉर्सेस यात्रा वेयर हयह हॉर्सेस छंदह नामानह हैविंग द डिफरेंट names of Vedic meters Sapta seven Aruna Yojita hooked up by Arundev Vahanti carry Devam the demigod Adityam the sun god. Translation. My dear king, the carriage of the sun god's chariot is estimated to be 36 million yojanas long and 1/4 as wide. 9 million yojanas are 72 million miles. The chariot's horses, which are named after Gayatri and other Vedic meters, are harnessed by Arundev to a yoke, that is also 9 million yojanas wide. This chariot continuously carries the sun god. Purport by His Divine Grace S.S. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In the Vishnu Purana, it is stated, Gayatri cha Brihati Usning Jagati Trishtup Eva cha Anushtup Panktir Itya Uktas Chandansi Harayo Ravehe. The seven horses yoked to the sun god's chariot are named Gayatri, Brihati, Ushnik, Jagati, Trishtup, Anushtup, and Pankati. These names are various Vedic meters designate the seven horses that carry the sun god's chariot. Om Agyan Timirandhasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Guruve Nama Sri Chaitanya Mano Abhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeyaham Sri Guru Sri Yutapadakamam Sri Gurun Vaishnamans Sri Rupam Sagrajatam Saganaragunata Nitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijansaitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Saganalalita Sri Vishakanutascha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavanashwari Vishavanushute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivashadi Guru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. We have previous texts also. 12, 13, and 14. So we're going to read that one. Evam muhurte na chatus trilaksha yojanas anyas chatadhikani sauro rathas trayi mayo aso chatas risu parivartate purishu. Thus, the chariot of the sun god, which is Trayimaya, are worshipped by the words Om, Bhur, Bhuvah, Swaha, travels through the four residences mentioned above at a speed of 34 million 800 yojanas, about 2 crores 72 million 6,400 miles in a muhurta. next text. Yasek Chakram Dvadasa Saram Shana Nemi Trinabhi Samat Saratmakam Sama Mananti ಸಾಕ್ಷೋ ಮೇರೋ ಮೂರ್ಧನೀಕೃತೋ ಮಾನಸೋತ್ತರೇ ಕೃತೇತರ್ಭಾಗೋ ಯತ್ರ ಪ್ರೋತಂ ರವಿರಥಚಕ್ರಂ ತೈಲಯಂತ್ರಚಕ್ರವತ್ ಭ್ರಮನ್ ಮಾನಸೋತ್ತರ ಗಿರೋ ಪರಿಭ್ರಮತಿ. The chariot of the sun god has only one wheel, which is known as Samvatsara. The 12 months are calculated to be its 12 spokes. The 6 seasons are the sections of its rim. And the 3 chaturmasya periods are its 3 seasons hub. One side of the axle carrying the wheel rests upon the summit of Mount Sumeru, and the other rests upon Manasottar mountain, affixed to the outer end of the axle. The wheel continuously rotates on Manasottar mountain like the wheel of an oil pressing machine. Text 14. Tasmin sakshe kritamulo dvitiyo akshasturyamanena ತಸ್ಮಿಸ್ ತೈಲಯಂತ್ರಾಕ್ಷವದ್ ಧ್ರುವೇ ಕೃತೋಪರಿ ಭಾಗ. ಎಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ 1/4 ಎಸ್ ಲಾಂಗ್. ಥರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೋಜನಾಸ್ ಆರ್ 3 crore 15 million miles. The upper end of this second axle is attached to Dhruvalok by a rope of wind. My dear king, the carriage of the sun god's chariot is estimated to be 36 million yojanas, about 2 crore 88 million miles long and 1/4 as wide. 9 million yojanas are 72 million miles. The chariots, horses which are named after Gayatri and other Vedic meters, are harnessed by Arunadev to a yoke that is also 9 million yojanas wide. This chariot continuously carries the sun god. So, this is all short description of Prabhupada's purport, quoted from Padma Purana. Gayatri cha brihati ushni jagati trishtup eva cha anushtup panktir iti uktas ಛಂದಾಂಸಿ ಹರೆಯೋ ರವೇಹ. ಇಸ್ ವೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರೋಟೇಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಸುಮೇರು ಮೌಂಟೇನ್. in a previous shloka described about Sumeru mountain, that whole Sumeru mountain is made of solid gold. So in this planet, in the earthly planet, there have some iron mountains we see in many places, but in upper planets there have the very huge and very solid gold mountains and other rocks. So this this Srimad Bhagavatam description is especially is the fifth canto, especially describing about whole Brahmand, whole universe. Behind this description, there have a purpose. This whole world created by Lord Krishna. So, so sun god is representer of Lord Krishna. So this is whole universe is illumination of the god. The illuminating this sun god, whole universe, especially upper planetary systems, is illuminating all the stars and Jyotish chakras, planetary systems, like seven planetary system. According to Jyotish, this all planets illuminating because of the sun god. And sun god is illuminating by Krishna himself. Before the creation, this material world totally dense darkness, whole world. And when Garbhodakshaya Vishnu and other Vishnu appear for creation, and then gradually created this sun god, moon god, and other planets. So first of all, this sun god created for this our whole world illuminating. So this way we can get this illumination, this prakash by sun god. In night time also we are getting from moon god, that is also illuminating. But and Bhagavad Gita, there Krishna himself saying about sun god, imam vivasvate yogam proktavanaham aveva vivasvana manave pra manne rikshva kave bravit. Imam vivasvate yogam, this Bhagavad Gita's knowledge of Bhagavad Gita is spoken a millions of years ago to sun god. There, after hearing Arjuna asking, how I can believe this you are this knowledge given millions of years ago, the Bhagavad Gita's knowledge. So there, Krishna replying, your and my birth is so many births, but you are not remember, but I am remember. It's all births. So this way we can see millions of years ago this sun god taught by Krishna. And after learned from Krishna, this sun god exactly doing whatever Krishna taught. So big demigods and authorities are following Vedas or Krishna's instruction. So our responsible also have. So those who are like preachers are gurus. So representer of the Lord. So we have to represent this truth and also follow the truth. So there have six types of chandas description given in Padma Purana. All the Vedic scripture written by this six types of measurement of chandas. So we have another appearance of Vakreshwar Pandit Prabhu. So we are going to read the description of Vakreshwar Pandit. श्री बकरेश्वर पंडित प्रभु की सो हियर बकरेश्वर पंडित प्रभु इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आई एम गोइंग टू रीड. श्री बकरेश्वर पंडित वाज प्रेजेंट विथ श्रीमान महाप्रभु ड्यूरिंग हिज पास्ट टाइम्स इन नवदीप एंड आफ्टर हिज acceptance of sannyas, he also accompanied him to Jagannath Puri during the time of the Lord's residence in Puri. He continued to live with him. There was there as well. Sri Vakreshwar Pandit took birth in the village of Gupti Pada near Triveni. He was an especially proficient dancer and kirtaniya and could dance continuously for 72 hours. Harivo, Harivo, Harivo. Very ecstatic. When Sri Chaitanya Mahaprabhu began his pastimes of congregation chanting of the holy name of Sri Hari in Navadvip, Sri Vakreshwar Pandit was an important singer and dancer in that assembly. It was by his mercy that Devanand Pandit was delivered from the warp of Mahaprabhu. He was also present during the Lord's journey to Ramkeli. Devanand Pandit was at one time known as the foremost lecturer on the Bhagavat. One day, Srivas Pandit went to hear his discourse, and being moved in ecstatic love by hearing the Bhagavatam, he began to cry a few of the ignorant students of Devanand Pandit, thinking that this was creating a disturbance, removed Srivas Pandit from the assembly and left him outside through, though this was done in front of the Devanand, he didn't restrain his students from his this act of disregard to the devotee Bhagavat. There are two types of Bhagavat, the book Bhagavat and the devotee Bhagavat. For this reason, Devanand Pandit became implicated in an offense to a great devotee, Mahabhagavat. When Sri Chaitanya Mahaprabhu came to hear how his dear devotee Srivas Pandit had been disrespected, he gave many instructions concerning the Bhagavat. He told that those who read the book Bhagavat but don't offer respects to the devotee Bhagavat are simply offenders. Though they may read the Bhagavat for eons, still they will never attain love of Godhead. The devotee Bhagavat and the book Bhagavat are non-different in order to understand. The book Bhagavat, one must first sincerely serve the devotee Bhagavat. Therefore, Mahaprabhu neglected Devanand and didn't bestow his mercy on him. One evening, Vakreshwar Pandit came to perform dancing and chanting of the holy name at the house of one devotee from Kulia, across the bank of the Ganga from Nadia. Receiving this auspicious news, Devanand proceeded there, and upon seeing the appearance of the symptoms of divine love in the person of Sri Vakreshwar Pandit, he became charmed. Gradually and great crowd gathered at that place, and Devanand Pandit taking a cane, sugar cane, in his hand, kept that crowd in order so as not to obstruct the ecstatic dancing of the Sri Vakreshwar Pandit. In this way, Vakreshwar Pandit performed chanting and dancing for two praharas, about 6 hours. On into the night, when the finished dancing sat down, Devanand came and offered dandavats at the lotus feet of Sri Vakreshwar Pandit, who became pleased with this service and blessed Devanand with the words Krishna Bhakti Hau. He blessed and he said Krishna Bhakti Hau, Krishna Bhakti Prapt Ho. May you attain devotion to Sri Lord Krishna. From that day, devotion was awakened in the heart of Devanand by the mercy of Vakreshwar Pandit. Thereafter, when Mahaprabhu came to Nadia to have darshan of his mother and Mother Ganges, he bestowed his mercy on Devanand at Kulia. Because you have served Vakreshwar, I noticed you. Vakreshwar is fully amused with the Lord's transcendental energy, and whoever becomes devoted to him attends to the lotus feet of Sri Krishna. His heart is the personal abode of Sri Krishna. And as Sri Krishna dances, so Vakreshwar also dances. Wherever one can get the association of Vakreshwar, that place is some total of all holy places and is as good as Sri Vaikuntha. Sri Vakreshwar Pandit's disciple was Gopal Guru Goswami, and Gopal Guru Goswami's disciple was Sri Dhyanchand Goswami. In his Dhyanchandra Paddhati, Dhyanchandra Goswami has written that person who was previously very expert in the arts of singing and dancing, the gopi Tungavidya, is presently renowned in the world as Vakreshwar Pandit. He has appeared on the fifth day of the dark fortnight of the month of Ashad, June, July, Vaman Mass. And he closed his pastimes in this world on the sixth day of the bright fortnight of the month Ashad. While Vakreshwar danced, Mahaprabhu himself would sing and Vakreshwar would catch hold of his lotus feet, saying, "O moon-faced one, give me 10,000 Gandharvas and let them sing while I dance. When I will be happy. Mahaprabhu answered, "You are one of my wings. Haribo, Haribo. If I had another like you, I can fly in the sky. Haribo." Chaitanya Charitamrita Adi Leela 10:17, Vakreshwar Pandit's worshipable deity is Sri Sri Radhakant, whom he worshipped in Kasi Mishra's house, which was also the residence of Sri Chaitanya Mahaprabhu Gambhira, Puri. These deities are still being worshipped there to this day. So, Vakreshwar Pandit Prabhu's very divine pastimes. So, you have any questions, comments? Today, no, actually purport given nicely, so I cannot prepare about philosophy. कोई प्रश्न है? 5 मिनट आज का श्लोक के अनुसार सूर्यदेव का वर्णन है कि किस प्रकार से सूर्यदेव का एक रथ है, उसमें एक ही पहिया है. जनरली हम लोग देखते हैं दो पहिया होता है या चार पहिये होते हैं, चार चक्के होते हैं, लेकिन सूर्यदेव के विषय में हम लोग श्रीमद् भागवतम से सुनते हैं उसका एक ही पहिया है, एक ही चक्का है, और वो इतना बड़ा है कि उसका एक बार जब राउंड हो जाता है मतलब एक बार कंप्लीट रोटेट हो जाता है तो पूरा एक साल हो जाता है एक बार राउंड होने से, तो इतना बड़ा उसका भैया है, इसको समत्सर बोलते हैं। और ये जो चक्का है वो मानसोत्तर पर्वत जो कि सुमेरु पर्वत के चारों तरफ फैला हुआ है, और मानसोत्तर पर्वत जो है सुमेरु पर्वत से थोड़ा छोटा है, तो उसके ऊपर में ऐसे चारों तरफ घूमता है। और सूर्यदेव जो है उस रथ में बैठे रहते हैं, और सुमेरु पर्वत को दाहिने तरफ से चक्कर लगाते हैं ऐसे। जनरली हमारा जो घड़ी होता है वो इस तरह से घूमता है, लेकिन सूर्यदेव का यहाँ डिस्क्रिप्शन के अनुसार ऐसा घूमता है, मतलब सुमेरु पर्वत को इस तरह से चक्कर लगाता है। लेकिन चूंकि हाँ चूंकि भगवान का अचिंत शक्ति के द्वारा जो पवन के झोंके से वो इस तरह से मतलब दिखाई देता है कि राइट साइड घूम रहा है, मतलब लेफ्ट साइड होकर के घूम रहा है, इस तरह से हम लोग को लगता है, ऐसा बताया गया है। तो कुछ जो है ग्रह नौ ग्रहों में से कुछ ग्रह जो है लेफ्ट साइड होकर के लेफ्ट साइड होकर के घूमते हैं जैसे सूर्यदेव, और कुछ ग्रह जो है राइट साइड होकर के घूमते हैं। तो इस तरह से ये भगवान की अचिंत शक्ति है जिसमें आकाश में अंतरिक्ष में सबको सब ग्रहों को फ्लोटिंग मतलब तैरा दिए हैं भगवान, और अपने अचिंत शक्ति के द्वारा भगवान की अचिंत शक्ति ये हवा के द्वारा पवन के द्वारा ये बहाए जाते हैं, तरह से चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से आज का ये वर्णन है। हरे कृष्ण। बक्रेश्वर पंडित प्रभु चेतन महाप्रभु के नवदीप से ही वो मौजूद रहे बक्रेश्वर पंडित प्रभु, तो ये इसको बक्रेश्वर पंडित प्रभु का चेतन महाप्रभु के जाने के पहले ये चले गए थे, और चेतन महाप्रभु कहा करते थे कि तुम्हारे जैसे डांस करने वाला और गाने वाला यदि और एक मिल जाए तो मैं आकाश में उड़ूंगा, ऐसा बोलते थे। तो बक्रेश्वर पंडित प्रभु का आज आविर्भाव तिथि है, इनका एक छोटा सा एक लीला है। एक बार देवानंद पंडित प्रभु एक दूसरे और चेतन महाप्रभु के एसोसिएट्स हैं, वो भागवत के कथाकार माने जाते हैं, लेकिन उनसे एक बार अपराध हो गया। जिस समय एक बार कथा कर रहे थे, ऐसे भागवत की कथा कह रहे थे, तो वहां पर श्रीवास पंडित प्रभु जो महाभागवत हैं चेतन महाप्रभु के अनन्य भक्त हैं, वो आकर के बैठ करके सुनने लगे। तो जब सुनते सुनते भागवत, क्योंकि महाभागवत हैं उनको भागवत कथा सुनते ही उनके शरीर में रोमांच हो आया। रोमांच, कंप, अश्रु ये सब शरीर में प्रकट होने लगे। तो ये दिव्य इस तरह के सात्विक विकार जब प्रकट हो जाता है तो भक्त से भक्त जो है काबू में नहीं रहता है, वो नाचना चाहता है, गाना चाहता है, रोना चाहता है इस तरह से। तो श्रीवास पंडित भी इसी मूड में जब कथा उधर चल रहा था, कथा के बीच में बैठे थे श्रीवास पंडित, उसको अचानक इस तरह से नाचने का मन हो गया और वो नाचने भी लगे। तो देवानंद पंडित के कुछ शिष्यों ने सोचा कि ये कथा में डिस्टर्बेंस कर रहा है तो इसको निकाल देना चाहिए। वो लोग मूर्ख थे, उतना मतलब पहुंचे हुए नहीं थे, और देवानंद पंडित प्रभु भी उतना मतलब केयर नहीं किए, रोके नहीं उन शिष्यों को, तो ये हो उनके लिए एक अपराध बन गया, वैष्णव अपराध। हम जानते हैं वैष्णव अपराध जो है बहुत भयानक होता है, हाथी माता की तरह भयानक होता है। कहते हैं हाथी माता, जब हाथी जो सुंदर गार्डन में जाता है तो उसको तहस नहस कर देता है। तो वैसे श्रीवास पंडित के अपराध करने के कारण देवानंद का जो चित्त है मलिन हो गया। और दूसरा, चेतन महाप्रभु ने सुना कि श्रीवास पंडित को इस तरह से अपमानित किया देवानंद पंडित ने, तो बहुत रुष्ट हो गए चेतन महाप्रभु और उसको बोले कि तुमने श्रीवास पंडित को इंसल्ट किया है, इसलिए तुमको भगवान कृष्ण का कृपा नहीं मिलेगा। इस तरह से उसको मतलब बोले। तो देवानंद पंडित बहुत उदास रहने लगे। तो एक दिन की बात है, कुलिया ग्राम में शाम के समय बक्रेश्वर पंडित प्रभु एक भक्त के घर में डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो उस समय हजारों हजारों लोग इकट्ठा हो गए। जनरली भक्त लोग अभी भी जब नगर संकीर्तन में जाते हैं तो हजारों लोग घेर लेते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है। तो इसी तरह से बक्रेश्वर पंडित प्रभु जो है वहां नाचने लगे, गाने लगे, तो हजारों लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ हो गया, बढ़ गया। तो देवानंद पंडित ने देखा कि उसका सात्विक विकार उसके शरीर में प्रकट हो रहे हैं। तो फिर यही मौका है सोच करके बक्रेश्वर पंडित को डिस्टर्ब से, पब्लिक के डिस्टर्ब से बचाने के लिए उन्होंने एक गन्ने का बड़ा वो लाठी लिया, डंडा लिया, और सभी पब्लिक को पूरा घेरा में मतलब कंट्रोल कर लिया इस तरह से। तो इस तरह से कंटिन्यू छह घंटा तक, दोपहर तक छह घंटा तक उसका डांस चलता रहा, कीर्तन चलता रहा वक्रेश्वर पंडित का। और जब रात को जब डांस शांत हो गया तो रूम में आए तो वहां पर देवानंद पंडित यही मौका है बोल के उसके चरणों में गिर गए, प्रणाम किए, दंडवत किए। तो बक्रेश्वर पंडित ने बोला, क्या बोला, कृष्ण तुमको प्राप्त हो, कृष्ण की कृपा तुम्हें प्राप्त हो, इस तरह से आशीर्वाद दिया। तो उस आशीर्वाद के प्रभाव से चेतन महाप्रभु का फिर दोबारा कृपा प्राप्त हुआ। तो बक्रेश्वर पंडित की कृपा से जो है देवानंद पंडित भी बाद में अपराध मुक्त हो गए और चेतन महाप्रभु ने उसको बाद में कृपा किया। तो और ये बताया जाता है कि ये पूर्व जन्म में मतलब कृष्ण लीला में तुंग विद्या नाम के गोपी थे वक्रेश्वर पंडित, ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की